وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ہم چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف. سب سے پہلے دنیا کے اے مسافر سیریز میں جو آپ نے کل واقعہ سنا، اس کے بعد کیا قدر آئی آپ کو اپنی زندگی کی اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے اتنی بڑی، یہ مہلت، یہ جو سانس چل رہی ہے، اور اس میں کتنی آزادی ہے ہمیں کہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں نیکی کر سکتے ہیں. الحمدللہ. ایسے میں ضرورت ہے کہ اس سیریز سے ہم ہر روز اپنے لیے کوئی سبق لیں. یہ صرف ایک کہانی کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہانی سن لیں اور بس کوئی، یا نہ کہانیاں سنانے کا یہ وقت ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دل نرم ہوں اور نیکی کی طرف مائل ہوں، اور جو ہم نے کرنا ہے اپنے اس وقت کے لیے اس کی طرف تھوڑی ہماری توجہ ہو. یعنی یہ منزل وہ ہیں جو ہر ایک کو پیش آنی ہے، ہر ایک نے یہاں پہنچنا ہے. کوئی انسان ہم میں سے جتنے اس وقت زندہ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، یہ موقع، یہ مرحلہ مجھ پہ نہیں آنا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس سیریز کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس منزل کے لیے ابھی سے کچھ تیاری کریں. ابھی سے جو ہمارا دھیان اس سے ہٹا ہوا ہے تو اپنا دھیان اس طرف کو کریں. آج کی دیکھتے ہیں سیریز میں ہم کیا سیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، سر بوجھل سا ہو رہا تھا. نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے حالات کچھ صحیح نہیں چل رہے تھے، مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. دوستوں رشتہ داروں میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے جمع پونجی سے تیزی سے خرچ نکل رہا تھا، اور آگے کا پتہ نہیں تھا کہ اگلا مہینہ گزرے گا کیسے. گھر میں راشن وافر ہو یا قلیل، نوکری ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے ملنے جلنے والوں کو یہی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ورنہ ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے. میں گاڑی سے اپنی درسگاہ کی طرف روانہ ہوا. گاڑی باہر پارک کر کے اپنی درسگاہ یعنی قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قدم رکھا. یہاں کے مکین بڑے اچھے دوست ہیں، یہ کبھی آپ کی غیبت نہیں کرتے، کبھی آپ کا حال لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے. میں نے آج اپنا رخ معمول سے ہٹ کر قبرستان کے بائیں جانب کیا. اس طرف میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یہاں قدرے نئی قبریں تھیں. آج ذہن منتشر تھا، کبھی گھر کے کرائے کا خیال آتا تھا، کبھی بجلی کے بل کی طرف دھیان چلا جاتا تھا، کبھی اگلے مہینے کے راشن کی فکر سر پہ سوار ہو رہی تھی. میں نے کیا بنایا زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں، ایک ایوریج قسم کی جاب، معمولی سا کریئر. میرے ساتھ والے آج کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے. آصف کو دیکھ لو، کتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہے. نعمان کی اپنی فرم ہے، احمد کے والد نے اس کو اپنے بزنس میں ساتھ بٹھا لیا، اور میں نوکری کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ بس قرآن کی تعلیم لے رہا ہوں. اب تو نوکری بھی چلی گئی، اب بس قرآن کے ساتھ ہی وقت گزرتا ہے، یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. जब से कुरान पढ़ना शुरू किया, कई इसके अहकामात ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। ना मैं रिश्वत दे सकता हूँ, ना सूद खा सकता हूँ, ना हराम कारोबार कर सकता हूँ। हलाल की रूखी सूखी में इस महंगाई के दौर में गुजारा करना है। गरीब लोग तो किसी के आगे हाथ फैला लेते हैं, मगर सफेद पोश कहाँ जाए। मैं अपनी सोचों में चलता चला जा रहा था और बहुत दूर निकल आया था। इस तरफ मैं यहाँ पहली दफा आया था। मैं ख्यालात में गुम था कि एक जबरदस्त खुशबू ने मेरी सोचों का सिलसिला मुनकते कर दिया। ये खुशबू कैसी है? शायद किसी ने आज अपने प्यारे की कब्र पर कोई अगरबत्ती की खुशबू लगाई हो। मगर ये अगरबत्ती नहीं लगती, ना ही गुलाब के फूलों की खुशबू है। ऐसी खुशबू मैंने पहले नहीं कभी सूंघी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सिवाय कच्ची कब्रों के मुझे और कुछ भी नजर नहीं आया। सामने से बाबा जी हाथ में फावड़ा लिए आते नजर आए। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा जी यहाँ ये खुशबू कैसी है? अरे बेटा, तुमसे कहा था ना, कब्र की जाहरी हालत पे ना जाना। कभी संगे मरमर के नीचे के मकीन तकलीफ में होते हैं, और कभी कच्ची कब्रों वाले भी खुशबुओं में लिपटे होते हैं। मैंने हैरत से कहा, क्या किसी ने फूलों की चादर चढ़ाई है यहाँ? बोले, नहीं, इस जगह पर अक्सर ऐसी खुशबू आती है। यहाँ कोई एक नेक खातून है जो दफन है। मैंने सवाल किया, कौन सी कब्र है उसकी? बाबा जी ने दो कब्रें छोड़ के अगली कब्र की तरफ इशारा किया। कहने लगे, बेटा जब मैंने ये कब्र खोदी थी ना, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई अल्लाह का प्यारा यहाँ आने वाला है। कब्र में ऐसे था जैसे नूर हो, वहशत नहीं थी, अंधेरा नहीं था। जब मैंने इसकी कब्र तैयार करनी शुरू की थी, तो अचानक साथ वाली कब्र मुझसे खुल गई और वहां से इस कदर तेज रोशनी आ रही थी जैसे सूरज चढ़ाओ। मैंने अपने साथ काम करने वालों से कहा, फौरन इस कब्र की दीवार वापस चुन दो, कोई अल्लाह वाला आराम कर रहा है। चुनाचे ये दीवार चुन दी गई। तो इन खातून को तो हमसायगी भी बहुत अच्छी मिली है। बेटा, जिंदगी में बहुत कब्रें खोदी हैं। कब्र अपने मकीन का पता दे देती है। एक दफा ऐसा हुआ, दो ग्रुपों में फायरिंग हो गई जिसमें 3 लोग हलाक हुए। उनमें से एक को उसके वरसा यहाँ लेकर आए दफन करने के लिए, और कब्र खोदी गई तो उससे सांप और बिच्छू निकल आए। वारसों ने खौफ के मारे दूर से ही कब्र पर मिट्टी डाल दी और रवाना हो गए। इसी तरह एक दफा एक पुलिस वाले को दफनाने के लिए लाया गया तो उसकी कब्र टेढ़ी हो गई। फिर नई कब्र खोदी गई तो वो भी टेढ़ी हो गई। पहले उन लोगों ने इल्जाम मेरे ऊपर धर दिया, मगर जब यके बाद दीगरे 5 दफा कब्रें खोदी गई, हर दफा टेढ़ी होती रही, तब तो वारसों ने जबरदस्ती टेढ़ी कब्र में ही उसको डाल दिया। मैं बाबा जी की बातों से हैरान रह गया और सोचने लगा, इस खातून ने ऐसा क्या किया होगा? कैसी खुशकिस्मत है। बाबा जी, आपने इनका जनाजा देखा था? हाँ बेटा, जब इनको लाया गया था तब भी बड़ी खूबसूरत खुशबू हर तरफ फैल गई थी। सारा माहौल मुअत्तर हो गया था, और इनके साथ आने वालों ने खुद एतराफ किया था कि ऐसा जनाजा नहीं देखा। मगर ये कह के बाबा जी चुप हो गए। क्या हुआ, बताएं क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। बेटा, इस मैयत के साथ मुश्किल से चंद एक लोग थे। वो क्यों? मैंने हैरत से सवाल किया। बेटा, ये उन दिनों की बात है जब कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं साथ आ सके। मैं मजीद हैरान हो गया। इसका मतलब है इसका जनाजा पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मगर इसका अंजाम कितना खूबसूरत हुआ। मैं इस कब्र के करीब ही बैठ गया और सोचने लगा, क्या ऐसा करती होंगी ये जिसको मेरे रब ने पसंद कर लिया। बाबा जी ने अपना सामान उठाया और चल दिए, और मैं वहीं खुशबुओं के झोंकों में बैठा रहा। मैंने कतबे पे नजर डाली, जोहरा बीबी, सिर्फ 45 साल की उम्र पाई थी इन्होंने। मैंने जेब से रुमाल निकाला और कतबे को साफ करने लगा, फिर यूं लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी है, जुनेद बेटा तुम हैरान हो कि ये खुशबुएं कैसी हैं। बेटा ये मेरे रब की खूबसूरत मेहमान नवाजी है, मैं तो एक बहुत ही मामूली सी औरत हूं। बाकी सबकी तरह मैं भी दुनिया में खोई हुई थी, गफलतों में पड़ी हुई थी। मेरा ताल्लुक बहुत ही मालदार खानदान से था, जिनको सिर्फ फैशन और दुनिया परस्ती से दिलचस्पी थी, जहां सिवाय बेगमात के पास कपड़े, जूते और पर्स की बातों के और कोई टॉपिक नहीं होता था, जहां फखर इन बातों पे किया जाता था कि इस समर में तुम वेकेशन के लिए यूरोप के किस मुल्क जा रही हो, और समर के बाद वहां की शॉपिंग पे डिस्कशन होती थी। मैंने इसी माहौल में आंख खोली और अपने इर्द गिर्द हमेशा यही होते देखा। फिर इसी में मेरी शादी हो गई और यहां से मेरी जिंदगी बदल गई। शादी के बाद मैं एक ऐसे इलाके में मुंतकिल हुई जहां मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरे हमसाए में एक आंटी रहती थी जिन्होंने एक दिन मुझे दर्स पे दावत दी। मैंने ना तो कभी दर्स तो सुने थे और ना ही मुझे कोई खास दिलचस्पी थी, मगर उनके दावत देने पे ये सोचा कि चलो वहां जाऊंगी तो नई दोस्तें बनाऊंगी, वहां जाऊंगी तो कुछ खाने पीने को भी मिलेगा, और बहुत अरसे से पार्टी टाइप कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इतने कपड़े पड़े में वो भी पहनने का मौका मिल जाएगा। मैं गई तो इस नीयत से थी, मगर मेरे अल्लाह ने मेरी काया पलट दी। वहां जो दर्स सुना तो एक एक बात मेरे दिल में उतर गई। जब मैंने उस घर से बाहर कदम रखा तो मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैं वो पहली वाली जोरा नहीं थी, यूं लग रहा था किसी ने मुझे ख्वाब से जगा दिया, जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ दिया। मेरा दिल पिघल चुका था और मैंने उस दिन इरादा कर लिया कि अब मैंने कुरान सीखना है, अल्लाह के कलाम को जानना है, इससे पहले कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं धोखे में हूं। इसके बाद मैंने कुरान सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर ली। मेरे जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया, मगर जहां मैंने ये सीखना शुरू किया और तब्दीलियां तो आईं, मगर सबसे बड़ी तब्दीली लोगों के रवैये में आने लगी। जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ती जा रही थी, मेरे तौर अतवार बदलने शुरू हो गए थे। वो चीजें जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, उनमें दिलचस्पी खत्म होने लगी थी, और जैसे जैसे मेरे अंदर तब्दीली आ रही थी, लोगों के मेरे साथ रवैयों में भी बहुत बड़ा चेंज आया था। शुरू में तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसको एक नया नया जोश समझा। शौहर ने भी देखा तो यही सोचा कि शौक में कर रही है, खुद ठीक हो जाएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसे लगने लगा मैं अनफिट होने लगी हूं उनकी मजलिसों में। और इसी पर मेरी मुखालफत शुरू हो गई, मगर कुरान ने मुझे जो लज्जत दी थी उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकती थी। मेरे हिजाब पे एतराज होने लगे, मेरी नमाजों को मजाक बनाया जाने लगा, मेरे कुरान पढ़ने पे मुझे अल्काबात मिलने लगे, इतने मुझे ताने दिए गए। जुनेद बेटा, लोग तो कुफर से इस्लाम की तरफ आते हैं तो अपने घर वालों के बुरे रवैये की शिकायत करते हैं, मगर मैं तो सिर्फ पैदाइशी इस्लाम से शऊरी इस्लाम की तरफ आई थी। इस पर मुझे बहुत सताया गया। समझ लो कि रिश्तेदारों ने मेरा बायकॉट कर दिया, शादियों से, दावतों से। खानदान वाले मुझे अपने घर बुलाने से कतराते थे, उनकी महफिलों में मैं सूट नहीं करती थी। पर मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने सिर्फ अल्लाह से दोस्ती कर ली थी, उसको अपनी जिंदगी बना लिया था। मैं जो बड़े खानदान की लाडली थी, अल्लाह के रास्ते पर चलने की वजह से बिल्कुल अकेली हो गई। मैं काम काज से जब फारिग होती तो बाकी मेरा सारा वक्त कुरान के साथ गुजरता, मेरी सारी मसरूफियत कुरान बन चुका था, ध्यान इसी में लगा रहता था। कभी इसको याद करती, कभी इसकी आयात में गौर करती, कभी इसको चूमती कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल किया कि मैं इसको समझ सकूं। अब ये मेरी जिंदगी बन गया था। अब वो मजलिसें अच्छी भी नहीं लगती थी जिनमें बैठ के कहकर गए लगाया करती थी, उन दोस्तों में अब दिल नहीं लगता था जिन पर मैं जान छिड़कती थी, वो मशगले अब बेतुके और फजूल लगते थे जिनमें मैं शौक से हिस्सा लेती थी, वो ड्रामे, वो फिल्में, वो डाइजेस्ट सब बेकार की झूठी बातें लगने लगी थी, वो जो मैं घंटों वक्त को जाया कर देती थी और एहसास भी नहीं होता था। कुरान के साथ जुड़ने के बाद वही वक्त मुझे कीमती लगने लगा, लम्हे लम्हे की मैं हिफाजत करने लगी, परेशान रहने लगी उसके लिए कि कहीं ये लम्हा जाया ना हो जाए। मेरे रिश्तेदारों ने तो मुझे छोड़ा था, मगर दोस्तों को मैंने खुद छोड़ा, इसलिए कि वो मुझे उन चीजों की तरफ दोबारा ले जाना चाहते थे जिनको मैं छोड़ चुकी थी। वो बार बार मुझे इस तरफ बुलाते थे और मैं टालती थी, हत्ता कि वो मुझसे मायूस हो गए। वो जान गए कि ये अब हमारे काम की नहीं रही, तो उन्होंने मुझे खैरबाद कह दिया। शुरू में तो बहुत खला महसूस हुआ, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे इससे बेहतर दोस्त दे दिए। बेटा, बड़ा मुश्किल होता है ये कुर्बानी देना, बहुत मुश्किल होता है लोगों की बातें सहना, बहुत दर्द होता है जब लोग अजीब नजरों से देखने लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब शौहर ताने देता है। मगर मैं जब भी सबसे गुजरती थी तो एक ही बात कहती थी, ए अल्लाह सिर्फ तेरे लिए, ये भी सह लूंगी सिर्फ तेरे लिए, बस तू मुझे कबूल कर लेना। मेरे कुरान की तरफ आने के बाद मेरे आंसू गिरते थे तो इस बात पर कि शादी से पहले जो जिंदगी के दिन गुजर गए वो गफलत में चले गए। मैं रातों को उठ उठ के तौबा करती थी, हर वक्त डरती रहती थी कि अगर अल्लाह ने मुझे माफ ना किया तो मेरा क्या होगा। सब ऐशो आराम होने के बावजूद मुझे हर वक्त अपनी आखिरत की फिक्र लगती थी, जो मुझे किसी पल चैन से बैठने नहीं देती थी। मुझे जिंदगी की मोहलत ज्यादा नहीं मिली, शायद इसलिए अल्लाह ने मुझसे जल्दी जल्दी सारे काम करवा लिए। मुझे दो बच्चे दिए और उनके वालिद तो अपने कारोबार में मसरूफ रहते थे। मैं इनको बड़े प्यार से कुरान की तरफ लाती चली गई। जानते हो जुनेद, जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी तो मेरे ऊपर कुछ अरसा सख्ती का भी गुजरा था, जिसको मैं अब सोचना भी नहीं चाहती, मगर मेरे बच्चों की दुआओं से वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। और मैं अब ये चाहती हूँ कि क्यामत के दिन भी मेरे अमाल का हिसाब ना लिया जाए और वहां पे भी मैं सुरखरू हो जाऊं। बेटा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है और उसके वादे बिल्कुल सच्चे हैं। हाँ, मौत की तकलीफ है, हाँ कब्र के अजाब हैं, मगर आज ये कुरान मेरा कब्र में भी साथी है। मेरे मुश्किल वक्त में ये मेरे काम आया, जिस वक्त कोई भी मेरे साथ यहां नहीं। जब मैं यहां लाई गई थी तो वो पहली रात सबसे मुश्किल थी, जिसमें मेरा हिसाब किताब शुरू होना था, मगर ये मेरा साथी मेरे साथ खड़ा हो गया। मेरी सूरह मुल्क रोशन चेहरे के साथ जगमगाती भी यहां पहुंच गई। मेरी नमाज एक तरफ आके खड़ी हो गई, मेरे रोजे आ गए, मेरा सदका आ गया। यह है मेरे असल दोस्त। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने तो छोड़ दिया था, मगर इन मेरे दोस्तों ने मेरा साथ निभाया। ये हैं सच्चे रिश्ते। मुझे अपने रिश्तेदारों की बेरुखी का गम रहता था, मगर अल्लाह ने देखो मुझे बदले में कितने प्यारे ये साथी दे दिए। अब मैं ये सोचती हूँ, हाय जो वक्त मैंने जाया कर दिया था जिंदगी में, काश उसमें भी कुछ कर लेती तो और ज्यादा मेरी कमाई हो जाती। काश वहां पे मैं एक लम्हा भी ना जाया करती। अब मैं यहां आराम से हूं, मुझे यहाँ कोई मसला नहीं है, बहुत खुली जगह है मेरे पास, हद्दे निगाह तक रोशन है, मैं खुश हूँ, मुझे कैद खाने से रिहाई मिल गई। अब तो बस अल्लाह से मुलाकात का शौक है कि कब कयामत आएगी और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। जानते हो मैं यहाँ से जन्नत के नज़ारे भी करती हूँ, एक सुराख है जिससे मुझे जन्नत नज़र आती रहती है, ऐसी हसीन जगह मैंने कभी नहीं देखी। जो देखने में इतनी हसीन है, जब दाखिल होंगी तो कैसा लगेगा। बस मैं कहती हूँ जल्दी वो वक्त आ जाए जब मैं इसमें दाखिल हो जाऊं। मैं जेरे लब मुस्कुराया और वहां से उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल सुकून पा चुका था। अरे मैं भी कैसा पागल हूं, किस बात पे परेशान होता हूं कि मेरे पास नौकरी नहीं। नौकरी नहीं तो क्या हुआ, कुरान की दौलत तो है, जिसको ये दौलत मिल गई उसको सारे जहान की दौलत मिल गई। मेरे पास रिस्क के मसले हैं, मगर देखो इसके बावजूद अल्लाह ने जो मुझे इतना बड़ा खजाना दिया हुआ कुरान के इल्म की सूरत में, वो हर मसले को दूर करने वाला है। बाकी रिस्क का इंतजाम भी अल्लाह कर देगा। मुझे तो अब अपनी असली दौलत को मजीद समेटना है। मैं नाकाम नहीं हूं, मैं तो कामयाब हूं, वो लोग नाकाम हैं जो इसको भूल कर अपनी दुनिया चमकाने में लगे हैं। मैं कितने बोझल दिल के साथ यहां आया था और अब पुरसकून दिल के साथ लौट रहा हूं। ए अल्लाह मेरा अंजाम भी इतना ही खूबसूरत कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आज का ये एपिसोड मुकम्मल हुआ। इसमें जो मैंने बातें बताई हैं आपको दूसरी कब्र के रोशन होने की और टेढ़ी कब्र की, ये बिल्कुल सच्चे वाकयात हैं, जो आपको मैं किताब भी बता सकती हूँ जिसमें ये मौजूद हैं। और इसी तरह कुरान सीखने वाले की कब्र रोशन हो जाती है और ये कब्र में इंसान का साथी बनता है, ये भी हमें हदीस से सबूत मिलता है। इसी की बेस पर ये वाकयात हैं। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए हमारा पढ़ना, और जो लोग इससे अभी आशना नहीं हुए इस लज्जत से, अल्लाह ताला उनका रुख भी इस तरफ मोड़ दे। इन प्यारी रातों में ये दुआ है कि या अल्लाह हम में से किसी को कुरआने पाक से महरूम ना करना। अल्लाह वाकई इसको हमारी कब्रों में हमारा साथी बना देना। जब इसको हाथ में पकड़ें तो सोचें ये मेरा कब्र का साथी है, बहुत प्यार आएगा इस पे फिर। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा ले, हक अदा करवा दे अपने कलाम का। सुनते हैं एक नशीद जिसने इमाम अहमद बिन हम्बल को रुला दिया, फिर वापस ज्वाइन करते हैं इस क़ियामुल लैल के प्रोग्राम में।